نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 34 آیت نمبر 267 سے 273 لیسن نمبر 34 آیت نمبر 267 ٹو 273 سورۃ البقرہ. ہم پہلے پورے سبق کا ایک خلاصہ سا کریں گے اور پھر ان دونوں لیسنز پہ جو اس سے پیچھے کا تھا اور یہ اس پہ انشاء اللہ تعالیٰ عملی پہلوؤں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اے ایمان والو، خرچ کرو صاف ستھری چیزیں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز میں سے جو ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سے، اور ارادہ نہ کرو گندی چیز کا کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم خود اس کو کبھی نہ لوگے مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکارتا ہے، ایمان کی پکار کے ساتھ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو. صرف اتنی بات پہ رک کے ایک سائڈ پوائنٹ نوٹ کریں گے، پھر موضوع پہ چلیں گے، اور وہ پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والے کے پاس مال ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ دین کے نام پہ یہ خیال جو آ جاتا ہے کہ بالکل ایک درہم یا ایک دینار بھی اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا، تو سوچئے کہ اگر ویسے ہی ہو تو پھر خرچ کہاں سے کریں گے؟ بات واضح، خرچ کون کرے گا؟ جس کے پاس اپنی ضرورت سے کچھ زائد ہوگا. تو یہاں ایمان والوں کو خرچ کی دعوت دے کر دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے پاس مال کی موجودگی کو ثابت کر دیا کہ وہ ہو سکتی ہے. اور مال کمانا کوئی بری بات نہیں، رزق حلال سراسر عبادت ہے، شرط یہ ہے کہ بندے کا دل اس چیز کے ساتھ نہ لگا ہو کہ جس کے پیچھے پھر وہ اپنے آپ کو ہلکان کر دے. پھر دوسری بات یہاں یاد رکھیے کہ پچھلی آیتوں میں خرچ کرنے والوں کا ذکر تھا، اب یہاں سے آگے کیا خرچ کرو یہ بات شروع ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہارے کمائے ہوئے مال جو تم نے کمائے ہیں تمہیں بھی اللہ کی مرضی سے ملے. لفظوں کو دیکھ لیں، انفقوا من طیباتی ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ میں سے. پاکیزہ سے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ ایمان والے کا سورس آف انکم پاکیزہ ہوتا ہے، وہ گندی چیزوں کو بیچ کر یا خرید کر مال نہیں کماتا، کیونکہ ایمان والے کا ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ گندے ٹیسٹ کا انسان نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ اپنے لیے گندگی پسند کرتا ہے اور نہ دوسرے کے لیے گندگی پسند کرتا ہے. پھر دوسری بات اس آیت میں جو اگلی بات ہے وہ کیا ہے کہ من طیباتی ما کسبتم، جو تم نے کمایا. کسب جو ہوتا ہے وہ محنت کے لیے ہوتا ہے عموماً، یعنی کمائی کے لیے آتا ہے، اور یہاں دنیاوی مال کے لیے، بعض جگہ آخرت کے لیے جو انسان جو جمع کرتا ہے جیسے نیکیوں کی صورت میں، اس کو بھی کسب کہتے ہیں. یہاں خاص طور پہ کمائی یا ارننگ کے معنوں میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے محنت سے کمانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور ماں کسب تم سے، اس میں سے ایک اور مسئلہ اخذ ہوا، اور وہ کیا کہ سامان تجارت پر بھی زکات ہے. یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گی. ایک شخص ہے، اس کا گروسری سٹور ہے، اس کی دکان میں 10 لاکھ کا سامان ہے اور ہر مہینے اس کو اس میں سے 20,000 مال ملتا ہے، उसमें खर्च करने के बाद कुछ जमा करता है, कुछ बचाता है, वो उसकी सेविंग्स है। ज़कात क्या होगी? जो माल साल के अरसे में रहा उस पे होगी। लेकिन वो जो 10 लाख का सामान उसकी दुकान के अंदर पड़ा हुआ है ना, इसको कहते हैं सामान्य तिजारत। अभी बिका नहीं, अंदर मौजूद है, साथ साथ बिकता है और आता जाता है, बिकता है और आता जाता है, तो सामान्य तिजारत पर भी ज़कात होगी। हाँ, वो चीज़ें जो तिजारत या कारोबार की हेल्प के लिए होती हैं, मसलन वहाँ अगर कोई वेइंग मशीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ कैलकुलेटर्स हैं, या वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो ट्रॉलीज की सूरत में है, उस पे नहीं होगा। या रैक्स हैं, जिन रैक्स के अंदर खाना रखा हुआ है, उस पे नहीं। किस पे ज़कात होगी? जो चीज़ बिक सके, जो चीज़ें बिकने के रास्ते में मददगार हैं, उस पे कुछ ज़कात नहीं होगी। लेकिन हर वो चीज़ जो बिकेगी उस पे ज़कात है। अब इसको आप कई तरह से समझ सकते हैं। हर एक का कारोबार फ़र्क होता है। कोई गाड़ियों का बिजनेस करता है, उसके पास 20 गाड़ियाँ रखी हुई हैं शोरूम में, वहाँ शोरूम भी है, शोरूम पे ज़कात नहीं है, लेकिन जो गाड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं जो अभी नहीं बिकी, उसके ऊपर भी ज़कात होगी। और उसकी दलील यही है, मिन तैयिबाती मा कसबतुम। और इसकी दलील भी नोट कीजिए, दारुल कुतनी की रिवायत है हज़रत इब्ने उमर से, फरमाया कि सामान में ज़कात वाजिब नहीं सिवाय उस सामान के जो तिजारत के लिए हो। इसी तरह अबू दाऊद, दारुकुतनी और बज़ार की रिवायत है सुमरा बिन जुन्दब से कि हमको सामान्य तिजारत की ज़कात अदा करने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया करते थे। तीसरी दलील है इसकी, एक सहाबी हैं हम्मास, वो कहते हैं कि कुछ कच्चे चमड़े अपनी गर्दन पर उठाए मैं हज़रत उमर की तरफ से गुज़रा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हम्मास, तुम ज़कात अदा नहीं करते? मैंने अर्ज़ किया, मेरे पास तो सिवाय इसके कोई और माल ही नहीं, यानी नकद की शक्ल में नहीं है, बस ये चमड़े हैं जो बेचता हूँ। तो फरमाया, ये तो माल है, नीचे उतारो। मैंने उतार कर आपके सामने रख दिया, आपने इनकी गिनती की और काबिले ज़कात पाया, यानी उसके नसाब से ऊपर था। तो फरमाया, इसकी ज़कात वाजिब है, चुनाचे उन चमड़ों की आपने ज़कात वसूल की। इसकी भी बहुत सारी सनदें मौजूद हैं। तो इससे क्या पता चला? कोई बकरियों का काम करता है, रेवड़ है उसके पास, तो बकरियों का एक ख़ास नसाब है। ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आप किताबु ज़कात में पढ़ेंगे। यहाँ बस इतनी सी बात नोट कर लें कि जो बिज़नेस है, कोई ऊँटों का काम करता है, कोई सब्ज़ी का है, सब्ज़ी वगैरह की बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जो मैं डिटेल में आपको नहीं लेके जाऊँगी, सिर्फ आपके लेवल के लिए इतना ही काफ़ी है कि सामान्य तिजारत में ज़कात होती है। फी ज़माना जो कारोबार होते हैं, उसमें मैंने आपको एक ग्रोसरी स्टोर की मिसाल दे दी, गाड़ियों का बिज़नेस है उसकी मिसाल दे दी, कोई भी चीज़ जो यूज़ेबल है और साथ ही साथ वो सेलेबल है, उस पे ज़कात होगी। ये तो उन लोगों के लिए थी जो कारोबार करते हैं। इसी तरह कुछ लोग ज़मींदारी करते हैं, जैसे देहातों में फसलें उगाते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? वमिम्मा खरजना लकुम मिनल अर्दी, और उसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाला है, इस पे ज़कात है। एक टर्म होती है ज़कात, मारूफ है, सब जानते हैं। 1 साल तक जो चीज़ आपके पास रहे, अगर वो नसाब से ऊपर है, लेकिन नसाब से ऊपर जो माल होता है साल तक आपके पास रहता है, तो उसके ऊपर आप 2.5% ज़कात देते हैं। एक दूसरी टर्म होती है, उसको उशर कहते हैं। उशर का लफ्ज़ अशर से है, अशर कहते हैं 10 को। जो लोग ज़मीन में फसलें डालते हैं, उनके लिए ज़कात नहीं है बल्कि उशर है। उशर क्या होता है? जब भी फसल उगे, साल के बाद उगे, बाज़ सब फसलें साल में 2 दफ़ा उगती हैं, बाज़ 3 दफ़ा भी उग सकती हैं, जब भी फसल उगेगी तो उसका 1/10, 10वां हिस्सा जो है वो अल्लाह के रास्ते में दिया जाएगा। फिर उसकी फिर किस्में हैं, बाज़ जगह फसलों को बारिशों के पानी से सैराब किया जाता है, यानी पानी का खर्चा जो है वो देने वाले को नहीं पड़ता, तो उसको फिर 1/10 देना होगा, यानी ज़्यादा देना होगा। लेकिन बाज़ जगह पैसों का पानी होता है, ट्यूबवेल्स का पानी है, या ख़रीदते हैं, तो फिर 1/20, यानी फिर उशर की बजाय 20वां हिस्सा हो जाता है जो कम होता है। और इसका भी एक ख़ास निसाब होता है जिसके ऊपर से ये चलता है। इसमें उसकी तरफ इशारा है कि जो हमने निकाला तुम्हारे लिए ज़मीन से, दोनों बातों को जमा करें तो ये पता चल जाता है कि इंसान को जो भी माल मिलता है ना, या तो अपने कसब की वजह से मिलता है, कोशिश की वजह से मिलता है, और दूसरी बात है अल्लाह के हुक्म से मिलता है। अखरजना लकुम, हमने निकाला। क्योंकि कोई इंसान जितने मर्जी दाने जमीन में डाल के बैठा रहे, निकलेगा तभी जब अल्लाह का हुक्म होगा। फिर क्या हुआ, वला तयम्ममुल खबीस, और ना तुम इरादा करो गंदी चीज का। मिन्हु तुन्फिकूना, कि उसको खर्च करो, यानी अल्लाह के रास्ते में देने के लिए गंदी चीजों का इरादा ना करो कि तुम वो अल्लाह के रास्ते में दोगे। क्योंकि वलस तुम भी आखेजी, तुम नहीं हो उसको लेने वाले। ये जो आखेजी ही है ना लफ्ज, ये असल में आखेजीना ही था, आखेजीन लेने वाले, आखेज की जमा। यानी तुम्हें कोई वो गंदी चीज दे तो तुम कभी ना लो, और अगर कोई जबरदस्ती तुम्हें देना चाहे तो क्या करोगे, इल्ला अन तुग्मिदू फी, तुम चश्म पोशी कर लोगे, यानी तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे। तुग्मिज़ू का लफ्ज़ गमज़ा से है, गैन मीम ज़ाद जिसको बोलते हैं उर्दू में, आंख बंद करने को कहते हैं, पलक से पलक मिलाना, इस तरह के कुछ ना कुछ दिखता भी रहे, ऐसे देखना कि लगे कि नहीं देख रहे। गम्स कहते हैं आरजी नींद को। अगमस शेयन अरबी में कहते हैं चश्म पोशी करना, तजावुज करना। मुराद क्या है कि अगर तुम्हें इतनी गंदी चीज कोई देना चाहे तो तुम आंखें बंद कर लो, उस चीज को देखना भी पसंद ना करो जो तुम दूसरों को दे रहे हो। वालमु अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, और जान लो कि अल्लाह ताला गनी भी है, यानी बेपरवाह है, और तारीफ किया गया है। यहाँ अदब सिखाया गया, जिंदगी भर के लिए कसूल सिखा दिया, और वो क्या है कि चल चलाओ का मामला ना किया करो, आसन तरीके से काम करो, खानापूरी ना किया करो। ऐसा ना हो कि जिसको दे रहे हो उसको वो देना अल्लाह की रजा की बजाय नाराजगी का सबब बन जाए, और देने वाले को तुमसे मोहब्बत होने की बजाय तुमसे नफरत हो जाए। इंसान सिर्फ गुरबा को ही नहीं देता, आम लोगों को भी देता है। कभी तहाइफ की सूरत में आप देते हैं, कभी सदके की सूरत में देते हैं। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अच्छे तरीके से दो, प्यार से दो, मोहब्बत से दो। ऐसा ना करो, वला तयम्ममु, ये तयम्मम जो लफ्ज़ है ये भी असल में ततयम्ममु था, लेकिन ते ते में मिल जाती है। कुरान पाक में 31 जगह ऐसा असूल मिलता है कि दो ते को एक कर दिया गया, जो जहां जरूरत होगी तो आपको बताया जाएगा। यहां भी ततयम्ममु की बजाय तयम्ममु है, और तयम्मम का लफ्ज़ यम से है, ये वही लफ्ज़ है जो हम तयम्मम में बोलते हैं, इरादा करना, कसद करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ मोहब्बत रखने और दूसरों की मोहब्बत लेने का असूल सिखा दिया, और वो क्या कि जो बंदा ये चाहे कि कल क़यामत के दिन उसको आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया जाए, तो उसको चाहिए कि वो इस हाल में अल्लाह ताला के पास आए कि अल्लाह ताला पर ईमान रखे और आखरत पर ईमान रखे, और चाहिए कि लोगों के पास उस चीज़ के साथ आए जो वो अपने लिए पसंद करता है, और जो उसको अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरों के लिए भी ना करे। बस दफ़ा इंसान अपनी ज़ात पे लाखों लगा लेता है, लेकिन दूसरे को कभी एक मौके पे भी कुछ देना पड़ जाए मजबूरन ही सही, तो उसके दिल पे चोट पड़ती है। चुन के ख़राब चीज़ निकालता है, बेकार चीज़, पड़ी पड़ी, गिरी पड़ी लेन देन। फिर इसमें कहूँगी कि ख़ास तौर पे जब मासियों के लिए ईद के जोड़े खरीदने जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं हमें लेने देने वाले दिखाओ, मासियों को देने। अपना ईद का जोड़ा किसी बड़े बुटीक से आया, कीमती आया, और किसी को दिया तो ऐसा दिया उस गरीब ने, पहना अभी धोया भी नहीं तो उसके तार निकलने लगे, पता क्या चला कि ये 100 रुपये वाला जोड़ा था, जिस पे शायद वो बेचारी ने को 20-25 रुपये सिलाई के भी दिए, वो भी ज़ाया हो गए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी को जब दो तो ये सोच लो कि जब कोई तुम्हें देगा तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। इस आयत के बारे में बरा बिन आज़िब की रिवायत आती है कि अंसार खजूर के मौसम में खजूरें जब पकती तो कुछ ना कुछ ला के मस्जिद नबवी में एक रस्सी के ऊपर लटका देते थे। असहाबे सुफा भी खाते, जो वहाँ स्टूडेंट्स बन के हॉस्टलाइट थे, यानी जो दिन रात वहीं रहते थे और अपने आप को इल्म के लिए डिवोट कर चुके थे, और बाकी लोग भी जो आते खाते। एक मौके पे कुछ लोगों ने वहाँ ख़राब सी यानी पुरानी और जो अच्छी खजूरें नहीं थी वो लटका दी, तो उस पर रियायत नाजिल हुई कि अल्लाह के लिए ये देते हो जो तुम खुद लेना पसंद नहीं करते। और ये घुटन दिल में कब आती है, जब बंदे को अपनी ज़ात प्यारी हो जाती है और अल्लाह की ज़ात जो है वो पीछे रह जाती है। और ये सोच आती कहाँ से है, शैतान की तरफ से। अपनी जात पे जितना भी खर्च करो तो कहते हैं आखिर कमाते किस लिए, किसी के लिए करना हो तो कहते हैं नहीं, क्यों दें, कैसे दें। अपने बच्चों पे इंसान मेरा ख्याल है कि सारी जिंदगी में लाखों खर्च कर देता है, और अगर किसी रिश्तेदार के बच्चे को देना पड़े, किसी यतीम को, मिस्कीन को, या किसी को वक्ती तौर पे आप खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उसको देते वक्त इंसान का दिल क्यों घटता है? इसकी वजह आयत नंबर 268 में है कि अश्शैतान यईदुकुमुल फ़क्रा, शैतान वादा करता है तुमसे या वादा देता है तुमको फकीरी का। यईद का लफ्ज़ जो है वो आइन दाल से है, दो मानी है इसके, उम्मीद दिलाना और धमकी देना। ये जो हम कहते हैं ना मैं वादा करती हूँ, तो इसमें असल में हम लोगों को उम्मीद दिला देते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शैतान तुमको धमकी देता है या फिर उम्मीद दिलाता है। किस बात की? अल-फ़क्रा, फकीरी की। कैसे? कि अगर तुमने अल्लाह के रास्ते में दिया तो फकीर हो जाओगे। ये फकीरी का जो लफ्ज़ है ना ये फ़क्र से है, फ़ा काफ़रा। फ़क्र कहते हैं कमर के मोहरों को, फ़िकारुल ज़हर कहते हैं पुश्त के मोहरे, 12 होते हैं ना जो हमारी पसलियाँ होती हैं, तो फकीरी है कमर तोड़ महंगाई। इतनी गुर्बत के कमर ही टूट गई, हमारे यहाँ मुहावरतन भी बोलते हैं कि कमर तोड़ महंगाई है। शैतान कहता है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे ना तो देखना तुम फकीर हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, अब क्या होता है, इंसान का हाथ खींचता है, कहता है अच्छा शुक्र है इसने मुझे बता दिया, अब तो मैं बिल्कुल नहीं खर्च करूँगा। नतीजा क्या हुआ कि माल अपने पास जमा होने लगा, ज़रूरत से तो ज़ायद था ही। अब जब माल जमा हुआ तो शैतान एक और विस्पर करता है, क्या? वया मुरुकुम बिल फहशाई, आखिर कमाते किस लिए हो, देखो ना, उठो ज़रा जाओ लेके आओ बच्चों की खुशी का सामान, खर्च करो। वही माल जो गरीबों से बचाया होता है ना वो फहाशी के सामान पे लगा देता है, और यहाँ फुखश से मुराद अल्लाह के रास्ते में ना देना भी है, ज़कात का ना देना भी फुखश है, और आम मासियत को भी फुखश कहते हैं, और अमूमन जिना के लिए ये लफ्ज़ आता है, यानी पहले माल को जमा करवाता है, जब माल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको एंटरटेनमेंट के नाम पे और नफ्स के तकाज़ों को पूरा करवाने में लगाता है, और फिर ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान की कभी पूरी ही नहीं पड़ती। क्या आज हमारा ऐसा हाल तो नहीं है? दीन के लिए देते हुए डरते हैं, अल्लाह के लिए देते हुए सोचते हैं, और अपने लिबास और अपनी महफिलों और अपनी शादियों पे कितना खर्च करते हैं। एक एक सिंगर को लोग हजारों दे देते हैं सिर्फ इस नाम पे कि पता चले कि फलां शादी हुई थी तो इतने धड़ल्ले से हुई थी, ग्रैंड मैरिज, हो सकता है वो एक महीना भी ना चले और ख़त्म हो जाए, और ऐसा लिटरली होता है। जहाँ ज़्यादा शैतान को खुश किया जाता है वहाँ से बरकत वैसे ही उठ जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके बरक्स मैं क्या करता हूँ, वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़दला, और अल्लाह वादा देता है तुमको अपनी बख्शिश का और फजल का। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुस्सत वाला और जानने वाला है। अल्लाह वादा क्या देता है? मग़फ़रत का। मग़फ़रत का जो लफ्ज़ है ना गफ़रा से, गैन फारा, मग़फ़र कहते हैं हेलमेट को, सर के ऊपर वो टोपी जो पहनी जाती है ताकि हादसे की सूरत में इंसान अपने आप को बचा ले, बस उसी टोपी से ही सोच ले मग़फ़रत क्या है, कि अल्लाह ताला बंदे को जहन्नुम की आग से बचने वाली टोपी पहना देते हैं, इशारतन ये समझ ले, ढाल बन जाता है इंसान के और जहन्नुम के बीच में उसका सदका। पता क्या चला कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है ना तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों की माफ़ी का जरिया बना देता है, क्योंकि सदका जो होता है ना वो अल्लाह के गज़ब की आग को ठंडा करता है। हम दिन रात अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं, अगर साथ साथ सदका खैरात करते रहेंगे ना तो उसका नतीजा क्या होगा कि अल्लाह के गज़ब की आग ठंडी होगी, और फजल अपने पास से ज़्यादा कर देता है। कैसे? कि अल्लाह ताला इंसान को और देता है। फजल का लफ्ज़ अमूमन दुनिया के माल के लिए आता है, हाज़ा मिन फजल रब्बी, आपने मारूफ आयत का टुकड़ा भी सुना होगा, अक्सर दुकानों पे भी लगा होता है, घरों के बाहर भी होता है, तो अल्लाह के रास्ते में दोगे तो बढ़ेगा, शैतान के रास्ते में खर्च करोगे तो फकीर हो जाओगे। अल्लाह की बात सच्ची है कि शैतान की सच्ची है? यकीनन अल्लाह की सच्ची है। जो लोग शैतान के वादों पे यकीन करते हुए उसकी बात को सुन के خرچ نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کل قیامت کے دن میدان محشر میں شیطان آ کے اعلان کرے گا. سورت ابراہیم کے پہلے ہی دو رکوعوں کے اندر آپ کو یہ پورا ڈائلاگ مل جاتا ہے کہ شیطان کہے گا، میں نے بھی ایک وعدہ دیا تھا اور اللہ نے بھی ایک وعدہ دیا تھا، میرے وعدے جھوٹے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو جو لوگ اس کی بات مان کے غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں، بالآخر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. چونکہ اللہ واسع علیم ہے، تو پھر تم بھی وسعت قلبی کا اظہار کرو. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے دیتا ہے، وہی روایت تھوڑے سے لفظوں کے فرق سے ہے جو پچھلے سبق میں ہم نے دیکھی تھی، کہ ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے الہی راہ خیر میں خرچ کرنے والے کو عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے کہ الہی بخیل کو برباد کر دے. بعض دفعہ یہ جو بینک کرپسی ہوتی ہے نا، یا اب لے آف ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ہماری سیل کم ہوتی ہے، یہ اس فرشتے کی بد دعا کا نتیجہ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں چونکہ ورلڈ اکنامکس خراب ہے، چونکہ ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا اور زیادہ ہو گیا، اصل میں وہ فرشتے کی بد دعا ہے کہ اللہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں، یہ تو خرچ کرتا بھی نہیں، جمع کر کر کے رکھتا ہے، تو ضائع کر دے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت اسماء سے، اللہ کے نبی نے فرمایا گنتی سے نہ خرچ کرو، یعنی گن گن کے اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو، ورنہ اللہ بھی تجھے حساب سے دے گا، اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی جمع کر لے گا، یعنی تجھے نہیں دے گا. جہاں تک ہو سکے کچھ نہ کچھ دیتی رہو. بعض لوگ گن کے دیتے ہیں نا، اور زکوٰۃ کا جب حساب لگاتے ہیں پھر تو بڑا ہی گنتے ہیں، کہتے ہیں 5 تولے کا سیٹ ہے، اس میں 1 تولے کے تو نگ بھی ہیں، کیا نگوں کے اوپر بھی دیں؟ اچھا کیا ڈوری کا وزن بھی کاٹیں؟ اچھا نئے سونے کا ریٹ لگائیں کہ پرانے سونے کا لگائیں؟ کبھی سنی ہے آپ نے یہ باتیں لوگوں سے؟ جب زکوٰۃ کا موسم آتا ہے نا تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور یہ اور وہ اور دس اینڈ دیٹ. میں کہتی ہوں جتنے خوشی سے سناروں کو اوپر ایکسٹرا مال دے آتے ہیں، اگر اتنا ہی اگر اللہ کے راستے میں نکال دیں وہ کھلا دل کر لیں، تو شاید ایسے سوال نہ کریں. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے، آپ نے فرمایا کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے اور لوگوں سے بھی قریب ہے، لوگ بھی پسند کرتے ہیں نا اس شخص کو جو دیتا ہے، اور دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے، اور جاہل صحیح عبادت گزار بخیل سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. ایک جاہل علم کوئی نہیں ہے لیکن دل بڑا کھلا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کو وہ اس عبادت گزار سے بہت پسند ہے جو مال کو روک روک کے رکھتا ہے. ایک بڑی پیاری روایت ہے، آپ کو لفظ بلفظ سنانا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا سخاوت، یعنی بی جینرس، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں جنت سے باہر جھکی ہوئی ہیں، تصور میں لائیں آپ، بس جو شخص اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے تو وہ شاخ اس آدمی کو جنت کے باہر نہیں رہنے دیتی، اٹھا کر اندر لے جاتی ہے. کنجوسی دوزخ میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں دوزخ سے باہر ہیں، بس جو شخص اس کی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہے تو وہ شاخ اس آدمی کو دوزخ کے اندر لے جائے بغیر نہیں چھوڑتی. یہ بحقی کی روایت ہے، تصور بن رہا، جنت کا درخت ہے لیکن شاخیں باہر لٹک رہی ہیں، آپ نے اس شاخ کو پکڑا تو وہ درخت آپ کو بھی اندر کھینچ لے گا. اتنی بڑی نیکی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اس کا اپوزٹ جہنم کے اندر لے جانے والا ہے. تو دل کا کھلا ہونا جنت کے راستوں کو آسان کرتا ہے. ایک اور کال ہے حضرت علی کا، کہتے ہیں کہ خیرات دینے کی طرف جلدی بڑھو کیونکہ مصیبت خیرات کو کود کر تمہارے پاس نہیں پہنچ سکتی. یعنی ہمارے پاس کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے، مصیبت، بیماری، تکلیف، ادھر سے ہمارا صدقہ جاتا ہے، یہ دونوں رستے میں انٹرفیئر کرتے ہیں، جیسے دو گاڑیاں نا، ایک ادھر سے آ رہی ہے ایک ادھر سے آ رہی ہے، تو جو صدقہ ہے نا یہ اس مصیبت کو پیچھے ہکیلتا ہے، چلو واپس چلو، اور مصیبت پیچھے چلی جاتی ہے اور ہمارا صدقہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ وسیع العلم والا ہے. اب جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو پھر سب سے اہم بات جو ذہن میں آتی ہے، کہاں خرچ کریں اور کیا کریں. پہلے یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم